नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। सरकार ने 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल के दौरान वर्ष 2025-26 तक एकीकृत पीएम आशा योजना को जारी रखने की स्वीकृति दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को मजबूत करने के लिए म्यूचुअल ऋण गारंटी योजना का शुभारंभ किया। भारत का निर्यात अप्रैल 2024 और जनवरी 2025 के दौरान 7.21% बढ़कर 683 अरब डॉलर पहुंचा। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी भारत की 2 दिन की यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। रूस और अमेरिका के शीर्ष अधिकारी यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने के लिए कल सऊदी अरब में वार्ता करेंगे। और वडोदरा में महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स के साथ मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया। समाचार संध्या के साथ मैं अतहर सईद। केंद्र सरकार ने एकीकृत प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा योजना को वर्ष 2025-26 तक जारी रखने को स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही सरकार ने खरीद वर्ष 2024-25 के लिए मूल्य समर्थन योजना के तहत राज्यों की तुअर, उड़द और मसूर दालों की समस्त पैदावार को भी खरीदने की अनुमति दी है। एक रिपोर्ट।
इससे दालों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने में सहायता मिलेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्ष 2024-25 के खरीफ मौसम के लिए मूल्य समर्थन योजना के तहत 9 राज्यों में 13 लाख मीट्रिक टन से अधिक तुअर दाल की खरीद को भी मंजूरी दे दी है। सरकार ने आम बजट में घोषणा की है कि देश में दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसियों के माध्यम से तुअर, उड़द और मसूर दालों की 100% खरीद अगले 4 वर्षों तक जारी रहेगी। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज मुंबई में सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यमों के लिए म्यूचुअल ऋण गारंटी योजना का शुभारंभ किया। योजना के अंतर्गत उपकरणों की खरीद के लिए बिना जमानत के 1 अरब रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। श्रीमती सीतारामन आज मुंबई में आम बजट में की गई घोषणाओं पर हितधारकों के साथ चर्चा कर रही थीं।
This time we have given a government guaranteed loan up to 100 crores, 60% of which will be guaranteed. There are immense lot of steps taken over the last few years, but this year particularly the extent to which government guarantee also goes to strengthen it will make a big difference to MSMEs.
वित्त मंत्री ने मुंबई में पहले सचल आयकर सेवा केंद्र का भी उद्घाटन किया। इसे डिजिटल सेवाओं तक लोगों की पहुंच सुगम बनाने और शिकायत निवारण में सहायता प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सरकार के बुनियादी ढांचे के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए पूंजीगत व्यय के लिए आवंटन में वृद्धि की नीति जारी है। उन्होंने कहा कि सरकार राजकोषीय घाटे को 4.5% से नीचे लाने की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है। वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार वित्त वर्ष 2030-31 तक ऋण सकल घरेलू उत्पाद अनुपात को 50% तक करने के लिए प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि नए प्रस्तावित आयकर कानून में धाराओं की संख्या 800 से घटाकर 500 करने का प्रस्ताव है, जिससे इस कानून की जटिलता कम होगी। वित्त मंत्री ने खाद्य सुरक्षा के बारे में कहा कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का उद्देश्य कम कृषि उत्पादन वाले 100 जिलों में कृषि उत्पादकता में सुधार करना है। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम 1.70 करोड़ किसानों की कृषि पैदावार को बढ़ाने में सहायता करेगा।
PM Dhan Danya Yojana. In those districts where agriculture productivity is not up to normal level, we've picked up on those 100 districts and ensure that we will have a comprehensive package of improving productivity. Make sure the youth in that area are getting opportunities there itself with agriculture value-added services.
देश के कुल निर्यात में अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 की अवधि में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 7.21% की वृद्धि हुई है। इसी अवधि में देश का आयात 8.96% बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आज जारी आंकड़ों के अनुसार इसी अवधि के दौरान कुल निर्यात लगभग 683 अरब डॉलर होने का अनुमान लगाया गया है, जबकि आयात लगभग 770 अरब डॉलर होने की संभावना है। आंकड़ों के अनुसार इसी अवधि के दौरान वस्तुओं का निर्यात लगभग 359 अरब डॉलर मूल्य का रहा, जबकि आयात लगभग 602 अरब डॉलर मूल्य का रहा। इस अवधि के दौरान वस्तुओं का व्यापार घाटा लगभग 243 अरब डॉलर का रहा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
भारत सरकार ने देश भर में 21वीं पशुधन गणना आरंभ कर दी है।
सरकारी कर्मचारी आपके घर भी आते ही होंगे। सभी पशुपालक अपने पशुओं की सही जानकारी दें ताकि सरकार आपके लिए बेहतर योजनाएं बना सके।
याद रहे, अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 की 21वीं पशुधन गणना में पोल्ट्री, पालतू पशुओं और आवारा पशुओं की कुल 219 नस्लों का डेटा संग्रह किया जा रहा है। कोई भी पशु छूटने ना पाए।
मेरे पशु मेरी जानकारी, होगी समृद्ध संपदा हमारी।
पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा देश हित में जारी।
ये आकाशवाणी है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी 2 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंचे। उनके साथ मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हवाई अड्डे पर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का स्वागत किया। एक रिपोर्ट।
अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का कल राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया जाएगा। कतर के अमीर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ बातचीत करेंगे। उनके सम्मान में एक भोज का भी आयोजन होगा। अमीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत और कतर के बीच मित्रता, विश्वास और आपसी सम्मान के गहरे ऐतिहासिक संबंध हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हाल के वर्षों में व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संबंधों के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच संबंध लगातार मजबूत हुए हैं। कतर में रहने वाला भारतीय समुदाय वहां का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। कतर के अमीर की यात्रा बढ़ती बहुआयामी साझेदारी को और गति प्रदान करेगी। भूपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। अमरीका और रूस के वरिष्ठ अधिकारी यूक्रेन रूस संघर्ष समाप्त करने के लिए कल सऊदी अरब में बातचीत करेंगे। लगभग 3 वर्ष पहले शुरू हुए संघर्ष के बाद पहली बार अमरीका और रूस के बीच ये सबसे महत्वपूर्ण बैठक होगी। रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव और विदेश मामलों के सलाहकार यूरी उशाकोव इस बैठक में भाग लेंगे। अमरीका की ओर से विदेश मंत्री मार्को रूबियो और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वाल्ट्स बैठक में हिस्सा लेंगे। ये बैठक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बातचीत का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि उनका देश अमेरिका रूस वार्ता में भाग नहीं लेगा और इस वार्ता के नतीजों को भी स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को इस वार्ता में आमंत्रित नहीं किया गया है। इसराइल की सेना ने कहा है कि दक्षिणी लेबनान में एक ड्रोन हमले में हमास के संचालन विभाग का प्रमुख मोहम्मद शाहीन मारा गया है। इसराइल ने शाहीन पर लेबनानी क्षेत्र से आतंकी हमलों की योजना बनाने का आरोप लगाया है। यह हमला युद्ध विराम समझौते के अंतर्गत दक्षिणी लेबनान से इसराइली सेना की पूरी तरह वापसी की समय सीमा की पूर्व संध्या पर हुआ। युद्ध विराम के बाद भी इसराइल के दक्षिणी और पूर्वी लेबनान पर हवाई हमले जारी हैं। इसराइल ने कहा है कि वो सिर्फ सैन्य स्थलों को निशाना बना रहा है। मिस्र में आज 3 मंजिला आवासीय इमारत ढहने से 10 लोगों की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ग्रेटर काहिरा के केरदासा शहर में बचाव दल और एम्बुलेंस तैनात किए गए हैं। सुरक्षा और फॉरेंसिक टीमें घटना की जांच कर रही हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज पंजाब के मोहाली में राष्ट्रीय कृषि खाद्य और जैव विनिर्माण संस्थान में उन्नत उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम परिसर का उद्घाटन किया। उन्होंने देशवासियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत में विश्वास रखने का आह्वान किया। श्री धनखड़ ने कहा कि विकसित भारत अब केवल सपना नहीं बल्कि हमारा लक्ष्य है। उन्होंने कृषि और डेयरी उत्पादों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्जीवित करने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने कृषि में प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर भी बल दिया।
There must be evolution of a mechanism in a village or in a cluster of villages where you have micro industries at the farm that add value to the agro produce, that add value to the livestock produce, milk produce. This will help evolve a sustainable society and nutritional food value will certainly grow.
भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा की चीन पर टिप्पणी भारत की अस्मिता, कूटनीति और संप्रभुता पर गहरा आघात है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आज नई दिल्ली में कहा कि सैम पित्रोदा का बयान गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाओं के बीच झड़प में प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों का अपमान है।
जिस प्रकार की बात सैम पित्रोदा जी ने कही है वो भारत की अस्मिता, भारत की कूटनीति और भारत की संप्रभुता पर बहुत गहरा आघात। उन्होंने इस प्रकार की बात कही कि चीन के साथ तो किसी प्रकार का विवाद ही नहीं है, जैसे भारत ही अग्रसर की भूमिका में, यानी आक्रामक मुद्रा लिए हुए।
इस बीच कांग्रेस ने सैम पित्रोदा की टिप्पणी से पार्टी को अलग कर लिया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री पित्रोदा के चीन के बारे में व्यक्त विचार कांग्रेस के विचार नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत के लिए चीन एक बड़ी सुरक्षा और आर्थिक चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक 19 तारीख को नई दिल्ली में होने की संभावना है। बैठक में पार्टी के सभी नवनिर्वाचित विधायकों सहित वरिष्ठ नेता हिस्सा लेंगे। अगले मुख्यमंत्री के लिए शपथ ग्रहण समारोह इस महीने की 20 तारीख को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित होने की उम्मीद है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दो नए आयाम जोड़े गए हैं। श्री प्रधान ने आज दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज के 126वें स्थापना दिवस को संबोधित किया। श्री प्रधान ने कहा कि देश भर में अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिए एक अलग फाउंडेशन बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार अनुसंधान राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन की स्थापना की योजना बनाएगी और अनुसंधान उद्योग के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण भी उपलब्ध कराएगी। श्री प्रधान ने विद्यार्थियों से इस धनराशि का उपयोग अनुसंधान और नवाचार के लिए करने का आग्रह किया।
हमें इस प्रकार की एक शिक्षा व्यवस्था खड़ी करनी है जिसमें लोग जॉब सीकर बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन जॉब क्रिएटर भी बनेंगे। जॉब क्रिएटर होने के लिए एंटरप्रेन्योर होना पड़ेगा। रिसर्च भी आवश्यकता है और हमारी देश में रिसर्च की कोई कमी भी नहीं है। टीचिंग रिसर्च के साथ हमें इनोवेशन भी चाहिए और मैं कॉन्फिडेंट हूँ हिंदू कॉलेज की हर एक विद्यार्थी आने वाले दिनों में हमारी इकोनॉमी में जॉब क्रिएटर बनेगा।
और अब खबरें महाकुंभ से। प्रयागराज के महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। आज शाम 6 बजे तक 1,23,00,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई। महाकुंभ में अब तक 54,19,00,000 श्रद्धालु पवित्र स्नान कर चुके हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मेला क्षेत्र में अनूठे कार्यक्रमों के बीच रेलवे ने अपनी विरासत और भविष्य की योजनाओं की झलक दिखाने के लिए एक प्रदर्शनी का आयोजन किया।
प्रदर्शनी में चिनाब और पंबन पुलों के मॉडल दर्शाए गए हैं। इसके साथ ही लोगों को नमो भारत, अमृत भारत और वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों जैसी अगली पीढ़ी की ट्रेनों के बारे में भी जानकारी दी गई है। प्रदर्शनियों में युद्धों और अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाओं में भारतीय रेलवे के ऐतिहासिक योगदान को दर्शाया गया है। प्रदर्शनी में 1965, 1971 और कारगिल युद्धों के दौरान भारतीय रेलवे के महत्वपूर्ण योगदान को उजागर किया गया है। परिवहन से परे ये डबल इंजन सरकार के माध्यम से विकास की दृष्टि में भारतीय रेलवे की भूमिका को भी दर्शाता है।
वडोदरा में महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स के साथ मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने ताजा समाचार मिलने तक 18वें ओवर में 7 विकेट पर 130 रन बना लिए हैं। बेंगलुरु ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल के दौरान वर्ष 2025-26 एकीकृत पीएम आशा योजना को जारी रखने की स्वीकृति दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को मजबूत करने के लिए म्यूचुअल ऋण गारंटी योजना का शुभारंभ किया। भारत का निर्यात अप्रैल 2024 और जनवरी 2025 के दौरान 7.21% बढ़कर 683 अरब डॉलर पहुंचा। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी भारत की 2 दिन की यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।